आरव लाइफ केयर हॉस्पिटल में फैज के कमरे में था। उसे पता चल चुका था कि आयु को उस दिन मोलेस्ट करने वाला फैज था। फैज से कुछ देर बहस करने के बाद आरव ने फैज को एक इंजेक्शन लगा दिया और फिर उसे उसी हाल में छोड़कर चला गया। आरव बाहर आया तो अयान और कबीर वहीं बाहर थे। फैज को इंजेक्शन लगाने के बाद आरव ने उसे वापस अपनी पॉकेट में रख लिया था। वहीं आरव को इतनी जल्दी बाहर देखकर अयान और कबीर दोनों को ही बहुत हैरानी हुई। कबीर ने आरव से झट से पूछा, इतनी जल्दी बाहर आ गए? वो ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से बाहर आ जाए। अंदर से किसी तरह की मारपीट की भी आवाज़ नहीं आई, फिर आपने कैसे हैंडल किया? कबीर के मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे जो उसने सब एक साथ आरव से पूछ लिए। आरव ने जवाब में कहा, पता चल जाएगा कबीर, इतने बेसब्री क्यों हो रहे हो? बोलते हुए अयान की तरफ देखा और आगे कहा, आधे घंटे तक उसके रूम में किसी को भी मत जाने देना, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना। लेकिन आपने आखिर किया क्या है? अयान ने भी वही सवाल किया जो कुछ देर पहले कबीर ने पूछा था। आरव ने आईज करके कहा, कम ऑन, सरप्राइज खराब मत करो मेरा, चल जाएगा पता, इतनी भी क्या जल्दी है? इसे छोड़ो और ये बताओ, सीसीटीवी फुटेज का क्या सीन है? मैं नहीं चाहता फुटेज गायब मिले। कबीर ने उसकी बात के जवाब में कहा, उसका मैंने प्रिंस को बोल दिया था। फैज जब यहाँ आया है उस दिन सुबह किसी के आसपास ना होने पर उसने ड्रग्स लिए थे। प्रिंस उस फुटेज को अब के टाइम के हिसाब से सेट कर देगा, पर उसके लिए ये जानना जरूरी है आखिर आपने उसके साथ किया क्या है। ठीक है, पर प्रिंस आखिर एक बच्चा ही है, उससे सोच समझकर डील किया करो, आरव बोला। आरव की बात सुनकर कबीर से पहले अयान ने रिस्पॉन्स दिया। वो जल्दी से बोला, चलिए आपको समझ तो आया, वो लड़का एक बच्चा है, आगे से उसे अपनी इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत किया करें। आरव ने अयान की तरफ देखकर सिर हिलाया और कहा, मैं काम ना कराने का नहीं बोल रहा हूँ, वो बच्चा है तो एक साथ इतने पैसे उसके अकाउंट में मत डाला करो, कहीं ड्रग्स वगैरह ना लेने लगे, मेरी उस पर पूरी नज़र है, कबीर ने जवाब दिया। अब हमें चलना चाहिए। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर अयान की तरफ देखकर कहा, 30 मिनट होने से पहले यहाँ से हिलना मत, थोड़ा टाइम बीत गया है, थोड़ी देर और एडजस्ट कर लो। वो तीनों रूम के बाहर लगभग 15 मिनट तक खड़े बैबोते रहे थे, फिर अयान को वहीं पर छोड़कर आरव और कबीर के साथ वहां से चला गया। वहीं रूम के अंदर फैज जमीन पर पड़ा था, वो उठकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, इस चक्कर में नीचे गिर गया। उसे आरव, कबीर और अयान की बातें साफ सुनाई दे रही थी, पर वो सिर्फ ठीक से सुन नहीं पा रहा था। ना तो किसी की मदद बुलाने के लिए वो अपने हाथ पैर हिला सकता था और ना ही उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। फैज की बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो रही थी। फैज ने अपने मन में बड़बड़ा कर कहा, ये आपने ठीक नहीं किया है आरव खुराना, हम बहुत प्यार से बात कर रहे थे, जिस दिन हम ठीक होंगे उस दिन सबसे पहले आपकी जान लेंगे, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, हमारे पापा ही आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी डॉक्टर को हम अपनी वाइफ भी बनाएंगे और पर्सनल नर्स भी, नहीं हम आपकी जान नहीं लेंगे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा और आपको तड़पते हुए देखना होगा, आपकी भी वही हालत करेंगे जो आपने हमारी की। गुस्से से फैज की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। आरव ने अयान को 15 से 20 मिनट बाहर बिताने के लिए कहा था, लेकिन उसे वहां खड़े हुए 5 मिनट ही बीते थे कि फैज के अटेंडिंग डॉक्टर और नर्स आ गए थे। उन्हें देखकर अयान को जल्दी से रूम के अंदर घुसना पड़ा। लकीली उन्होंने अयान को वहां खड़े हुए नहीं देखा। अयान अंदर आया तो उसने फैज को जमीन पर पड़े हुए देखा। उसे देखकर अयान उसके पास आया और धीरे से कहा, तुम यही डिजर्व करते हो मिस्टर माफिया, अगर तुम्हारी दुश्मनी मेरे भाई के साथ थी तो नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी फ्रेंड मिली थी क्या? उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जिससे प्रॉब्लम हो उसी से बदला लेना चाहिए। अयान फैज के पास झुककर बात कर रहा था, तभी अटेंडिंग नर्स और डॉक्टर अंदर आए। उन्हें ऐसे लगा जैसे अयान फैज को उठाने की कोशिश कर रहा है। फैज को गिरा हुआ देखकर वो दोनों दौड़कर जल्दी से उसके पास आए। उन्हें देखते ही अयान जल्दी से बोला, मैं इस तरफ से जा रहा था तभी मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, अंदर रूम में आया तो ये नीचे गिरे हुए थे, इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर, जल्दी से चेक कीजिए, जहां तक मुझे पता है इनका नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था और अब ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें पैरालिसिस अटैक आया हो। क्या पैरालिसिस अटैक? लेकिन ये तो बिल्कुल फिट थे, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे डॉक्टर ने हैरानी के साथ कहा। उन तीनों ने मिलकर फैज को बेड पर लेटाया। ये मैं कैसे बता सकता हूँ डॉक्टर, ये तो टेस्ट से ही पता चलेगा, जो भी हो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट पैरालिसिस अटैक में बदल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं चलता हूँ, आपको हेल्प की जरूरत हो तो किसी और डॉक्टर को भेज देता हूँ, अयान ने सिंपथी जताते हुए कहा। बोलते हुए उसने फैज की तरफ देखा जो तिरछी निगाहों से उसी को देख रहा था। डॉक्टर ने जवाब में कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं किसी को भेजकर वार्ड बॉयज को बुलाता हूँ और इनके टेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर जो आपने इन्हें सही टाइम पर संभाल लिया। अटेंडिंग डॉक्टर तुरंत फैज के इलाज में लग गया और हॉस्पिटल के पैरालिसिस स्पेशलिस्ट से भी कॉन्टैक्ट किया। अयान फिर वहां ज्यादा देर नहीं रुका, वो जानता था कि जितना टाइम आरव ने उसे दिया था वो टाइम फैज के टेस्ट वगैरह के लिए ले जाएगा उतने में बीत जाएगा। फिर भी उसने मैसेज करके आरव को यहाँ की स्थिति के बारे में सब बता दिया था। वहीं फैज की हालत देखकर अयान समझ गया कि आरव ने उसके साथ क्या किया था। बाहर जाते हुए उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, तो भाई ने उसकी बॉडी को पैरालाइज किया है, सही है, किसी को डाउट भी नहीं होगा, ऊपर से ये ड्रग एडिक्ट भी है, भाई इसकी हिस्ट्री अच्छे से जानते हैं, तभी उन्होंने सोच समझकर इसकी सजा चुनी है। सोचते हुए अयान के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो अपने कामों में लग गया।
वहीं आरव अयान के साथ गाड़ी में था और रूम में जो भी हुआ उसके बारे में कबीर को बता रहा था। पूरी रात मिसेस खुराना की केयर करते हुए मैंने फैज की सारी हिस्ट्री निकलवाई। उसे अलग अलग तरह के ड्रग्स ट्राई करना बहुत पसंद है। लड़कियों के मामले में भी इमेज बहुत बुरी है। किसी लड़की के जरिए ये करवाता तो उसमें टाइम लगता। तो मैंने पीटर से बात की, जिसे अलग अलग तरह के ड्रग्स के बारे में सारी जानकारी है। उससे ये पता लगाया कि ऐसा कौन सा ड्रग है जो थोड़ा सा भी ओवरडोज होने पर बॉडी पैरालाइज कर देता है। उससे सारी बातें पूछी और फिर बॉडी पैरालाइज करने का इंजेक्शन मंगाया और उसने थोड़ा सा वो ड्रग मिला दिया। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही मिलाया था। रिपोर्ट में यही आएगा कि उसने पहली बार वो ड्रग ट्राई किया था। बॉडी में पहले से ड्रग्स होने के ट्रेसेस मिल जाएंगे, इसलिए उसके बाप को शक नहीं होगा और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आरव ने अपना पूरा प्लान कबीर को बता दिया कि कैसे उसने इसकी तैयारी की। कबीर उसका प्लान सुनकर बहुत इंप्रेस हुआ। उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, प्लान तो काफी इंप्रेसिव है, फ्लॉप होने के चांस भी नहीं है, लेकिन अभी भी हमने आपकी मिसेस खुराना की सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया। फैज उनके पीछे पागल हो गया था, वो अपने बाप को कुछ नहीं करने देता, लेकिन उसकी ये हालत होने के बाद खान फिर से उनके पीछे लग जाएगा। उस बात की ही तो प्रॉब्लम है, पर चिंता मत करो, इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। हमारे कुछ आदमी खान के यहाँ काम करते हैं, तो वो बता देंगे कि खान ने क्या डिसीजन लिया है, उसके हिसाब से हम आगे का प्लान बना लेंगे। मैं मास्टर चिप का यूज नहीं करना चाहता, लेकिन बात अगर आयु की जान पर आई तो मुझे यूज करना होगा, आरव ने जवाब दिया।
इसी तरह उनके बातें करते हुए खुराना मैंशन आ चुका था। आरव कबीर के साथ अंदर गया तो आयु वहीं बाहर गार्डन एरिया में चहलकदमी करते हुए उसका वेट कर रही थी। आरव उसे बिना बताए बाहर चला गया था। उस बात पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से गौरवी जी उसे बाहर भी नहीं जाने दे रही थी। वो समझ गई थी कि जरूर आरव ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा। गाड़ी पार्क करके आरव और कबीर अंदर आए तो उनकी नज़र सबसे पहले आयु पर पड़ी, जो हाथ बांधकर आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देख रही थी। आयु के हाव भाव देखकर कबीर ने धीरे से आरव से कहा, लगता है आपकी क्लास लगने वाली है, ऑल द वेरी बेस्ट, मैं चलता हूँ। अरे तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो, ऑफिस का बहाना बना लो, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो, आरव ने बच्चों सा मुंह बनाकर कहा। आरव उम्मीद भरी निगाहों से कबीर की तरफ देख रहा था, लेकिन कबीर ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए और वहां से जाने लगा। कबीर के इस तरह आरव की बात अनसुना करने पर वो पीछे से तेज आवाज में बोला, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, अब तुम भूल जाओ कि युवानी मानने वाली भी है। कबीर का चेहरा दूसरी तरफ था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, हाँ जानता हूँ आप मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन पहले ही मैं सब ठीक कर लूंगा। अब संभालिए अपनी मिसेज खुराना को, वो ही आपको हैंडल कर सकती हैं। कबीर के जाने के बाद आरव ने आयु की तरफ देखा तो आयु ने सिर हिलाकर कहा, हो गया तुम्हारा दूसरों को धमकी देना, तुम जानबूझकर बाथरूम के पास आए थे ना, ताकि ये जान सको कि मुझे बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। अरे तो अब हर काम पर तुम्हें अपने साथ थोड़ी ना लेकर जा सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी बेबी, समझने की कोशिश करो, आरव प्यार से आयु को समझा रहा था और बोलते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में लिया। आयु आरव का हाथ हटाकर उससे दूर हो गई और फिर उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ तुमने फैज खान के साथ क्या किया है, हॉस्पिटल गए थे ना तुम। आयु की बातों से साफ था कि वो समझ गई थी कि आरव इस वक्त कहाँ गया होगा। आयु अभी भी फैज के पूरे सच से अनजान थी और वो आरव पर ही गुस्सा कर रही थी। आरव उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले आयु खुद गुस्से में बोल पड़ी, तुमने जो किया उसकी जरूरत नहीं थी, हम पुलिस के जरिए उसे अरेस्ट करवा सकते थे। आयु आरव को डांट रही थी, तभी आरव ने महसूस किया कि अभी अभी आयु ने फैज का नाम लिया है। आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कल रात चेंजिंग रूम में वो आदमी था। इसका पता लगाने के लिए आरव ने इतनी मेहनत की थी, जबकि आयु पहले से ही इस बारे में जान चुकी थी कि उसके साथ कल रात जो भी हुआ उसके पीछे फैज का हाथ था। बेचारा आरव, इतनी मेहनत की, आयु से ही पूछ लेता, वैसे अब इनका रिश्ता भी ग्रो कर रहा है, पढ़कर समीक्षा कर देना।